प्रभु यीशु मसीह का आदेश ये था ना कि हम यानी हम जो मसीह है और हमसे पहले जो मसीह थे, जो यीशु मसीह के चेले थे, ये मत्ती का सुसमाचार का 28वां अध्याय में आपको मिलेगा, 19वां पद में प्रभु ने कहा था कि जाति जाति के लोगों को विश्वासी बनाने के लिए नहीं कहा था, चेले बनाने के लिए कहा था। किसके चेले? अपने अपने नहीं, यीशु मसीह के चेले बनाने के लिए कहा था। फिर प्रभु ने चेला बनाने का तरीका भी बताया। प्रभु ने बताया कि उनको मेरे बारे में बताना है, वो जो आप पढ़ते हैं ना कि उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी सामने आए उसको पकड़ के पानी में एक डुबकी दिला के उसको बोल देना कि मैं तुझे, ऐसा नहीं था। मतलब ये कि उसको सुसमाचार आप बताएंगे, जब वो विश्वास करेगा तो उसके बाद क्या करेंगे, जो कुछ प्रभु ने हमें करने के लिए कहा है उनको सिखाना कि वो भी करना शुरू करें। आप बाइबल में जो पढ़ते हैं ना, आप पढ़ के निकल जाते हैं, हमें भी पढ़ के निकल जाता है, उसको उनको मानना सिखाओ। हम सोचते नहीं थे, पूछते नहीं थे प्रभु से, लेकिन जब प्रभु ने सिखाना शुरू किया कि प्रभु ने कहा कि उनको सिखाना है, उनको करके दिखाना है, फिर वो भी करना शुरू करेंगे। तो इसलिए मैं लोगों से पूछता हूँ, तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम ये देख रहे हैं कि जो बातें हमें समझ आई है वो वाकई में समझ आई है कि नहीं, या हम ऐसा सोच के चल रहे हैं कि हाँ कल की टीचिंग या पिछले संडे की टीचिंग हमें समझ आई तो फिर हम करेंगे ना। करने के बाद कुछ तो नतीजा निकलेगा, उससे पता चलेगा वो टीचिंग सही थी या नहीं सही थी, सब कुछ पता लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम सालों से चर्च में हैं, हम सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं और पता चले कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वो तो हमें बीच बीच में देखने की ज़रूरत है ना। बाइबल में कहीं लिखा है कि अपनी जांच करो कि तुम विश्वास में हो या नहीं, कहीं लिखा है? ढूंढ लीजिएगा, है नया नियम में है, यानी 39 किताब मैंने हटा दी, अब सिर्फ 27 किताबें हैं जहाँ पे आपको ढूंढनी है। चलिए ये भी बता देता हूँ, कुरिन्थियों की पत्री में, अब आप एक ही किताब में आप ढूंढिए, एक जगह पे लिखा है कि जांच करो, देखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। किसको बताया गया है? विश्वासियों को, आपके और मेरे जैसे विश्वासियों से कहा गया है। किसने कहा है? पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा, कि अपनी जांच करो, देखते रहो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। यानी कहने का मतलब यह है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम चर्च में हो और इस गलत फहमी में हो कि मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं या चल रही हूं। ये जो आरती ने और पास्टर अमन ने और सुचेता ने और प्रसन्नता ने जो बातें बताई है, ऐसा नहीं है कि हम बाकी प्रार्थनाएं नहीं कर सकते या जैसे हम पहले कर रहे थे वो बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें कुछ और भी बात समझ आई है इन दिनों में, तो उससे क्या होता है कि हमारी प्रार्थना और आसान हो गई हमारे लिए, और प्रार्थना करके हमें तसल्ली है कि जिन बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि ये परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये फर्क है। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना कि जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में भी बंधा रहेगा या बांध लिया जाएगा, मैंने उसके कई अनुवाद पढ़े हैं, अलग अलग ट्रांसलेशंस, और उसको यूनानी में भी देखा है, और उस बात को हम इस तरह से भी अनुवाद कर सकते हैं कि जो कुछ हम पृथ्वी में बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधा हुआ होना चाहिए। यानी हमें मालूम होना चाहिए कि क्या हम बांध रहे हैं और क्या हम खोल रहे हैं, स्वर्ग के अनुसार खोलना चाहिए और बांधना चाहिए। यानी हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत है कि किसको हम बांधे और किसको खोले। जहां हमें अपना अधिकार का इस्तेमाल करना है वहां पर हम अधिकार इस्तेमाल करेंगे, जहां पर परमेश्वर से विनती करनी चाहिए वहां पर हम विनती करेंगे, जहां पर परमेश्वर से मांगना है, आपको मालूम है कि आप परमेश्वर से मांग सकते हैं। मांगने और विनती में कुछ फर्क है? आप लोग बताइए, फर्क है। मांगने का मतलब क्या है? हक से मांगना। जब यीशु मसीह ने कहा ना कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वहां पर विनती करो तुम्हें दिया जाएगा नहीं लिखा है, मांगने के लिए, डिमांड करने के लिए लिखा है, अपना हक जानकर, जैसे बच्चे अपने पिता से मांगते हैं। तो हम मांग भी सकते हैं, लेकिन हमें मालूम वो रिश्ते पर निर्धारित है कि हम परमेश्वर को कितना समझते हैं। ऐसे नहीं मांग सकते, ऐसे मांगने से मिलता नहीं है। जब हमें मालूम है कि वो हमारा पिता है और वो मेरे लिए कर देगा, जब वो भरोसा आपके मन में है तो आप मांग सकते हैं। यानी कि प्रभु ने कहा कि मांगो तो दिया जाएगा, इसलिए हम मांग रहे हैं। बहुत लोग बहुत समय से मांग रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा, इसलिए है कि उनका परमेश्वर के साथ वो रिश्ता नहीं है अभी, वो परमेश्वर को समझ नहीं रहे कि परमेश्वर मेरा पिता है। तो मांगने का भी एक समय है, तब हम मांग सकते हैं। विनती करने का भी समय है, विनती करेंगे। धन्यवाद करने का समय है, जो कि हर समय है, और परमेश्वर के लिए, दूसरों के लिए निवेदन करने का भी समय है। तो ये सब कुछ है हमारे पास, और समय के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें करनी चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक में लिखा था, कुछ दिन नहीं, शायद एक दो हफ्ता पहले, और मुझे पता चला कि हमारे चर्च के बहुत कम लोग मेरे फेसबुक पोस्ट पढ़ते हैं। उसमें मैंने लिखा था कि हमने देखा था फेसबुक में दूसरे चर्चेस के या दूसरे विश्वासियों को और चर्चेस को भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और इस बीजेपी पार्टी के खिलाफ लिखते हुए। इलेक्शन से पहले से हम देख रहे थे, मुझसे ज़्यादा रीना ने देखा है, मुझे बताया था कि ऐसा चल रहा था। और एक दिन फिर मुझे लगा कि लिखना चाहिए, तब मैंने लिखा था। तो आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा, कुछ लोगों ने शेयर भी किया फर्दर, और इंडिया के बाहर भी कई लोगों ने उसको शेयर किया है मुझसे पूछ के। हकीकत तो ये है कि हमें हमारे देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ये परमेश्वर का आदेश है हमारे लिए। उनकी आलोचना करने के लिए परमेश्वर ने कभी नहीं कहा है, उन पर दोष लगाने के लिए प्रभु ने नहीं कहा है। अगर आपको उनकी कोई भी बात पसंद नहीं है तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उनसे जाके बात करें। हम आपस में बात करें से कुछ फायदा है नहीं, है ना? पवित्र शास्त्र में आज हम चलते हैं, थोड़ा सा और देखेंगे, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में हमें कैसे रहना चाहिए, हम थोड़ा सा आज समझने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन पहले रीना ने एक और बात मुझे बताई, और आज मुझे सुबह ऐसा लगा कि इन सब बातों को लेके कुछ आपको बताना चाहिए। तिमोथी की पुस्तक में, या तिमोथी की पत्री में, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2, तिमोथियस की पहली पत्री का दूसरा अध्याय का शुरुआत से हम पढ़ेंगे, और हम पवित्र आत्मा से मांगेंगे ताकि हमें समझ मिले। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। एक बार हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस समय, इस पवित्र शास्त्र के लिए, इस बाइबल के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जिसमें तेरी इच्छा, तेरी मर्जी तूने प्रकट की है, तूने लिखवा के हमें दिया है। हम पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं, इस समय प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा की बातों को हम समझ पाएं। हमारी सहायता करना प्रभु, की जो बातें अभी हम समझने जा रहे हैं, जो बातें हम सुनने जा रहे हैं, जो बातें हम सीखने जा रहे हैं प्रभु, वो हमें समझ आए, और फिर पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर तो समझाना, और मुझ पर तेरा अनुग्रह हो कि मैं उन बातों को समझा पाऊँ जो तू मुझे समझाता जाएगा प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। देखिए पौलुस इस जगह पर, यानी और जब मैं कहता हूँ पौलुस, आप लोगों को मालूम है, खास रूप से जो बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आप बाइबल को पढ़ते समय ना, हर जब भी आप बाइबल खोल के पढ़ते हो तो आप एक बात का ध्यान रखना, चाहे वो सुबह हो या शाम हो या रात को हो, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं उस समय परमेश्वर इस किताब के द्वारा आपसे बात कर रहा है। ये समझते हुए बाइबल को पढ़ना, बाकी किताबों की तरह नहीं। आप जब बाइबल खोल के पढ़ना शुरू करते हैं तो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है इन बातों के द्वारा जो पहले से लिखी गई है, आपको वो समझाएगा। यहां पे लिखा है परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद। कितनी सारी बातें हैं इसमें, चार बातें हैं, विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। और फिर ये जो सब मनुष्य है उसमें कौन कौन है? सभी मनुष्य हैं जिनको आप जानते हैं। अगर आप बाकी पत्रियों में जाएंगे तो कम से कम दो या तीन पत्रियों में पौलुस ये कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, फिलिपियों की पत्री में वो कहता है, कुलुसियों की पत्री में कहता है, हर जगह वो कहता है कि जब भी मैं तुम्हें याद करता हूं मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं तुम्हारे लिए। हम में से कितने लोग जब एक दूसरे को याद करते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? आपको हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, सोचिए। तो आज से हम प्रैक्टिस करेंगे, जब भी हम किसी को याद करते हैं, जो कि हम करते हैं है ना, किसी ना किसी रूप से हम रोज किसी ना किसी विश्वासी को याद करते हैं। और पौलुस जो यहां पर लिख रहा ना, उसमें हमारे लिए एक शिक्षा है कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। कुछ वजह होगी, आप धन्यवाद करना शुरू कीजिए तब आपको पता चलेगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपको पता ना चल जाए। तो आप डेली सुबह उठ के जो भी विश्वासी को आप याद करते हैं, अपने घर में जो विश्वासी है उनको, वो तो सामने दिखते हैं आपको, तो एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। हफ्ता निकल जाएगा, 7 दिन निकल जाएंगे, उसके बाद हम इस बारे में चर्चा करेंगे, आप फर्क देखेंगे। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, बच्चों के लिए धन्यवाद कीजिए, बच्चे जो विश्वासी है अपने माता पिता के लिए कम से कम दिन में एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करके तो देखिए, फिर आपको धीरे धीरे पता चलेगा ये धन्यवाद करने से क्या लाभ होता है। क्या होता है लाभ? पसंद है ना सबको, क्या प्रॉफिट होता है, क्या बेनिफिट होता है, क्या प्रयोजन होता है, आपको पता चल जाएगा। अगर मैं अभी बताऊं तो कोई फायदा नहीं है, आप करके देखेंगे तो ज्यादा मजा आता है, क्योंकि फिर वो आपके साथ रहेगा। क्योंकि एक हफ्ता करने के बाद जब आपको फायदा दिखेगा ना, आप फिर करते रह जाएंगे, करते जाएंगे, और भी लोगों के लिए धन्यवाद करना शुरू करेंगे और आपकी जिंदगी बदलती जाएगी। ये मसीही जीवन की बुनियादी शिक्षा है। यहां पर आपको कहा है कि सब मनुष्यों के लिए और विशेष रूप से राजाओं के लिए और ऊंचे पद वालों के निमित्त धन्यवाद, विनती, प्रार्थना और निवेदन करते रहो। कारण क्या है? मैं कभी कभी सोचता हूं कि परमेश्वर कितना अच्छा है, कि परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर है, आप लोग मेरी तरफ देखिए, एक बात बता रहा हूं, परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर है वो आपको सीधा आज्ञा दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। तो सिर्फ इतना कहना काफी नहीं था कि इसलिए मैं चाहूंगा कि हर विश्वासी सबके लिए धन्यवाद करे, प्रार्थना करे, निवेदन करे और विनती करे, खास रूप से अपने इस जमाने में उस जमाने के हिसाब से राजा होंगे लिए, आज के हिसाब से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो और बाकी जो अधिकार रखने वाले हैं उन सबके लिए करे, बस आगे मत पूछना, ये मेरी आज्ञा है, तभी हम मानते या नहीं मानते, दोनों में से एक जरूर होता है ना। जो अच्छे लोग हैं जो इस तरह बैठे वो सब मानते हैं, और जो उस तरह बैठे वो पूछते कि हम क्यों नहीं, ऐसा नहीं, सभी मानते हैं, है ना, सभी अच्छे हैं, सभी मानते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें जानता है, हमारी फितरत जानता है, हमारी कमजोरी जानता है, हम कितने अच्छे हैं और कितने सच्चे हैं, ये सब कुछ जानता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, इसका कारण भी मैं तुम्हें बता देता हूं, कि इसलिए कि हम, आप सब बोलेंगे एक बार, अरे हम नहीं, मैं, इसलिए मैं, ये मेरे लिए है, किसके लिए है, ये पास्टर जेम्स के लिए नहीं है, पास्टर राहुल के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। अब मैं जानता हूं कि आपका पूरा ध्यान इसमें रहेगा, क्योंकि इसमें आपका फायदा है। पौलुस ने चार काम करने के लिए कहा, राजाओं के लिए और ऊंचे पद रखने वालों के लिए, ताकि हम जो विश्वासी है, जो परमेश्वर की संतान है, विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिता सके। तो मेरे लिए और आपके लिए भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताने के लिए और पूरी तरह आराम या विश्राम और चैन के साथ इस भक्ति को निभाने के लिए हमारे देश के जो नेता है, जो इस देश को, जिनके ऊपर इस देश को चलाने की जिम्मेदारी है, उनके लिए क्या करने की जरूरत है, विनती करने की जरूरत है, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, उनके लिए निवेदन करने की जरूरत है, और उनके लिए धन्यवाद करने की जरूरत है, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। यह हकीकत है ना, अगर उन लोगों को हम पसंद करते हैं, अगर वो हमारे विचार के अनुसार चलने वाले हैं, तो धन्यवाद करना थोड़ा सा आसान है। मैं सही बोल रहा हूं? अगर उनके विचार हमारे विचार से नहीं मिलते या हमारे विचार उनके विचार से नहीं मिलते, तो धन्यवाद करना थोड़ा सा मुश्किल है, है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल है। गाली देना आसान है, चर्च में गाली की बात नहीं होनी चाहिए ना, लेकिन हम ही लोग हैं ना चर्च में। तो परमेश्वर ने कहा कि हम अपने देश के, यानी हमारे लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर, चाहे आप उसको उनको पसंद करें ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनके लिए धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का। हमें नहीं मालूम कितने साल वो प्राइम मिनिस्टर की उस पदवी में रहेंगे, लेकिन जब तक वो रहेंगे, हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए विनती करें, उनके लिए परमेश्वर से निवेदन करें, और उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। कम से कम हमारे देश में एक प्राइम मिनिस्टर है ना, जिनको लोगों ने चुना है। अगर प्राइम मिनिस्टर की जगह वो इदी अमीन की तरह कोई होता, वो हिस्ट्री है कि बहुत कम लोग जानते हैं, है ना, उगांडा नाम के एक देश है अफ्रीका में, जहां पे इदी अमीन राज करता था, या ऐसे कोई डिक्टेटर होता, तो प्राइम मिनिस्टर है। और हमारा कर्तव्य है कि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जैसे कि हम पिछले दिनों में करते भी थे, कि परमेश्वर इन सब अगुओं के द्वारा तेरी इच्छा पूरी, हम ये प्रार्थना करते थे कि वो सुरक्षित रहे, हमारे देश के लिए, हमारे लिए अच्छा है कि हमारे लीडर्स हमेशा सुरक्षित रहे और परमेश्वर की बुद्धि उनको मिले, ये सब हम प्रार्थना करते थे। क्यों? क्योंकि हम विश्राम और चैन के साथ रह सके। इसका मतलब क्या है? कभी आपने पहले भी कई बार ये पढ़ा होगा, कभी सोचा नहीं होगा। और जो लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं, इसमें लिखा है विथ ऑल दैट वी मे हैव ए क्वाइट एंड पीसफुल लाइफ। विद ऑल गॉडलीनेस एंड रेवरेंस. तो ये क्वाइटनेस या पीसफुलनेस जो अंग्रेजी में है, विश्राम और चैन जो हिंदी में हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि देश में हमेशा शांति होगी. अंग्रेजी बाइबल इस्तेमाल करने वालों को कह रहा हूँ, अगर आप ये देख पढ़ते हैं पीसफुल लाइफ, तो इसका मतलब ये नहीं कि देश में हमेशा शांति बनी रहेगी. अच्छा होगा कि शांति हो तो, लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर हमारे लिए कह रहा है वो उस शांति की बात नहीं है कि हमारे मन में विश्राम हो, हमारे मन में चैन हो. यानी हमारे इर्द गिर्द में जो कुछ भी हो रहा है, यानी इन अगुओं के द्वारा अगर कुछ गलत भी हो रहा हो तो हम अपने शांति ना खो बैठे, हम अपनी जगह पे स्थिर हो. यहां पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, मैंने अभी आके चर्च में आके मैंने यूनानी में चेक किया जानने के लिए कि इसमें कितनी गहराई है. इसका मतलब है कि अगर हम कुर्सी में बैठे हैं तो हम कुर्सी में बैठे रहेंगे, इन इन बातों के कारण हमारा दिल नहीं फड़फड़ाएंगे. देयर विल बी नो एजिटेशन इन आवर हार्ट. हम उछलना कूदना नहीं शुरू करेंगे कि ये क्या हो रहा है. हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर अभी भी अपने सिंहासन पर है. ऐसा होने के लिए हमें एक काम करना होगा, अपने अगुओं के लिए, अपने देश के नेताओं के लिए धन्यवाद करना होगा, प्रार्थना करनी होगी, तब हमें वो समझ मिलेगी ये हमारे लिए. नहीं तो हम हर बात पर उछलना कूदना शुरू करेंगे, हर बात पर हम रिएक्ट करेंगे जो हमारे देश में हो रहा है. और ये 2000 साल पहले लिखी गई बात है. आज भी हालात में कोई परिवर्तन नहीं है, थोड़ा सा है. जिस समय ये पत्री लिखी गई, यहूदी लोग जो विश्वास में थे उस समय वो रोम के गुलामी में थे. उस समय उनको कहा गया था कि जो जिनके तुम गुलाम हो इस समय, उनके लिए प्रार्थना करो. कितना कठिन रहा होगा उनके लिए. हमारा देश तो आजाद है. पौलुस के द्वारा उन विश्वासियों को, जो ये जो तिमोथी की पत्री में आप पढ़ रहे हैं, ये तिमोथी इस समय कहाँ पर है, आप में से किसी को मालूम है? वो पढ़ने से पता चलेगा. उसमें लिखा है ये एफेसस में है. ठीक है, तो एफेसस में जो विश्वासी थे उनका ये पास्टर थे. तो ये शिक्षा जो तिमोथी को मिली है, सबसे पहले तिमोथी ने कहाँ सिखाया होगा? एफेसस में सिखाया होगा, अपने ही चर्च में, चर्चेस में सिखाया होगा. वहां पे जो लोग थे, खास करके जो यहूदी मत से विश्वास में आए थे, उनके लिए कितना कठिन रहा होगा. और जो यूनानी या जो अन्य जातियों में से थे उनको भी कठिन रहा होगा, क्योंकि एफेसस भी रोम के अधीनता में था. तो और खास करके यहूदियों को तो मन किया होगा ना कि एक मौका मिलता तो हम रोम को या रोम के जो गवर्नर है उनके हत्या कर देते और अपना शासन शुरू करते, है ना. यीशु मसीह से भी उन्होंने यही चाहा ना. याद नहीं है ना, जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जब जाने का समय आया, तभी लोगों ने क्या पूछा चेलों ने, उनका सबसे आखिरी सवाल क्या था? नहीं, वो तो यीशु मसीह के मरने से पहले पूछा था कि यीशु मसीह के आने के समय और उसका चिन्ह वगैरह क्या होगा. प्रेरितों के कामों में पहले अध्याय में सबसे पहले उन्होंने, सबसे लास्ट में और पहले उन्होंने यही सवाल पूछा कि प्रभु फिर इसराइल को कब तू फेर देगा, यानी इसराइल के सिंहासन को तू कब संभालेगा ताकि रोम के साम्राज्य यहाँ से हट जाए और हम चैन से यहाँ पे रह सकें. उनका सवाल ये था. उस समय परमेश्वर उनको क्या कहता है, अपने देश के लिए, अपने देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करो, विनती करो, निवेदन करो, धन्यवाद करो. तो आज से हम ऐसा करना शुरू करेंगे अपने देश के नेताओं के लिए. परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि उनको बहुत पसंद करो, आप प्यार करने के लिए कहा है ना, कहा है परमेश्वर ने? अच्छा सवाल पूछा मैंने. ओके आप लोग बताइए, परमेश्वर ने कहीं बाइबल में हमें कहा है कि हम अपने देश के नेताओं के लिए, नेताओं को प्यार करें या हमें प्यार करना चाहिए? बोला है, हाँ या ना में बोलिए. करना ही है, क्यों? सबको प्यार करें. जब परमेश्वर ने कहा है कि अपने पूरे मन से, अपने पूरी सामर्थ्य से और अपने पूरे प्राण से मुझे प्रेम करना और अपने पड़ोसी को भी करना, तो सबको प्यार करना है ना फिर. उसके अलावा परमेश्वर ने यह भी कहा है कि अपने दुश्मन से क्या करने के लिए कहा है? अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और अपने दुश्मन से प्यार करो. तो अगर आपके देश के नेता आपको अपना दुश्मन लगता है तो उनको ज़्यादा प्यार करना चाहिए, जैसे हम लोग पास्टर्स को बहुत प्यार करते हैं. उनके लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तो है ना. तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए. लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि उनको बहुत पसंद करो. पसंद नापसंद आपके हाथ में है. हमारे विचार उनके विचार से नहीं मिलते हैं, उनकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती, तो जाहिर है कि आप पसंद नहीं करेंगे उनको. कोई बात नहीं, प्यार करो, प्रार्थना करो. परमेश्वर ने उनकी तारीफ करने के लिए नहीं कहा है, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है. तो हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे, उसके बाद फर्क देखेंगे. उसके बाद हमें यह समझ आएगा कि हमारे मन में शांति है, हम उछल कूद नहीं रहे हैं, परंतु हम मस्त हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर है. हम विश्राम और चैन अपने मन में और भक्ति को पूरी रीति से हम निभा सकेंगे, यानी जो परमेश्वर अपने वचन में हमें कहता है उसके अनुसार हम जीते रहेंगे, चाहे देश में कुछ भी होता रहे, चाहे कल हमारे देश के अगुए हमें ये आदेश दे कि हमें बाइबल पढ़नी नहीं चाहिए, तभी हम पढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमें कोई डर नहीं होगा. हम इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों आदेश दिया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपना काम करते रहेंगे अपनी भक्ति और गंभीरता के साथ, यानी जो परमेश्वर ने कहा है उसको हम पूरा पूरा करेंगे, गंभीरता के साथ हम जिएंगे. इब्रानियों की पत्री में 13वां अध्याय का 15वां पद में परमेश्वर पवित्र आत्मा इस लेखक के द्वारा, लिखने वाले के द्वारा हमसे एक बात कहता है कि हम परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाते रहे. लेकिन वो तो पुराने नियम के समय में होता था ना, परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाना. लेकिन नए नियम के समय में भी परमेश्वर कहता है कि हमें बलि परमेश्वर के लिए चढ़ाना चाहिए. 13:15 में लिखा है ना, पढ़िए. इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाए करें. यह दूसरी बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले रीना मुझसे पूछ रही थी कि हाँ बाइबल में एक जगह पे लिखा ना कि परमेश्वर के लिए हमें बलि चढ़ानी चाहिए और वो स्तुति या धन्यवाद की बलि हो. हमने कहा ऐसा लिखा है, तो हम दोनों ने क्या किया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया. हर रोज परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर के लोगों के लिए धन्यवाद करना, उन लोगों के लिए भी जो हमारे कहना नहीं मानते हम धन्यवाद कर रहे थे, जो परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा हटके चल रहे उनके लिए धन्यवाद करना. तो मैंने फर्क देखा, उन सब के लिए प्रार्थना करना, उनको प्यार करना और आसान हो गया जब मैंने धन्यवाद करना शुरू किया. आमतौर पर क्या होता है, अगर कोई गलत जा रहा है तो सबसे पहले हमारे मन में क्या विचार आता है, बताना नहीं मैं बताता हूँ. ना अच्छा विचार नहीं आता ना. अगर कोई चर्च में है और थोड़ा सा वचन से हटके चल रहा है और हमें दिखाई दे रहा है, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करते हैं? नहीं, हम उसके जीवन की कमी निकालते हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि इसने ऐसे किया था, है ना, इसने हमारा कहना नहीं माना था, या कुछ दिनों से ये बाइबल क्लास में नहीं आ रहा था, या वगैरह वगैरह हम कहना शुरू सोचना शुरू करते, कहते नहीं है, मन में सोचते इसलिए हुआ होगा, या एक विश्वासी के साथ कुछ गलत हुआ तो सबसे पहले क्या विचार आता है, इसने जरूर कुछ गड़बड़ किया होगा, ये सब हम सोचते हैं, पहले सोचते थे, अब नहीं सोचते, अब हम सुधर गए। मैंने देखा है कि अगर हम धन्यवाद करने की प्रैक्टिस करेंगे हर विश्वासी के लिए, जब भी आप किसी को याद करते हैं ना विश्वासी को, चाहे हमारे अपने ओएचएन में से हो या किसी और चर्च के हो, उनके लिए धन्यवाद करने की प्रैक्टिस कीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि क्यों धन्यवाद करना है। और यहाँ पे लिखा है कि हम परमेश्वर के लिए स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते रहें, यानी परमेश्वर की स्तुति करते रहें। अब एक बात अंग्रेजी में पढ़ने वालों के लिए, अगर आप अंग्रेजी बाइबल में हैं तो उसमें लिखा है द फ्रूट ऑफ द लिप्स गिविंग थैंक्स टू द लॉर्ड, यही लिखा होगा ज़्यादातर इंग्लिश ट्रांसलेशन में, और द फ्रूट ऑफ योर लिप्स गिविंग थैंक्स और थैंक्स गिविंग, हिंदी में लिखा है अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। दोनों में फर्क है ना, आप लोग सब यही है, इब्रानियों की पत्री में है, 15वें पद में है ना, हिंदी में यही लिखा है ना, आप परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाएं, यही लिखा है, किस तरह का बलिदान, स्तुति रूपी, यानी आप परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते रहेंगे ना, वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान है। क्या है वो? वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान है। और वो उसके बारे में थोड़ा सा और खुलासा करके बताया है कि ये जो बलिदान है या ये जो स्तुति रूपी बलिदान है, ये जो है हमारे होठों का फल है जो उसके नाम का अंगीकार है, और अंग्रेजी में लिखा है कि थैंक्स गिविंग है। अब कौन सही है, कौन सा ट्रांसलेशन ज्यादा सही हो सकता है? हिम्मत करके बताइए ना, जो लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं, थैंक्स गिविंग ज्यादा ठीक है, थैंक्स गिविंग मुझे भी ज्यादा ठीक लगता है, लेकिन फिलहाल ये कि हिंदी में जो अनुवाद हो रखा है वो ज्यादा सही है, हिंदी का ट्रांसलेशन बेटर है इसमें, उसका नाम का अंगीकार करना, उसमें धन्यवाद है छुपा हुआ है, उसका नाम का अंगीकार करना, किसका नाम का, यीशु मसीह का, क्या अंगीकार करना, जो यीशु ने मेरे लिए किया है, उसमें धन्यवाद निकलेगा ना, इसलिए अंग्रेज में ट्रांसलेशन करने वालों ने थैंक्स गिविंग लिखा है, जबकि थैंक्स शब्द यूनानी में नहीं है, जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ये वही शब्द है जो रोमियो की पत्रिका 10वां अध्याय का 9वां पद में इस्तेमाल हुआ है कि यदि तुम अपने होठों से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, वही शब्द है यहां पर, अंग्रेजी में गलत नहीं है लेकिन अंग्रेजी में इतना नहीं समझ आता जितना हिंदी में समझ आता, तो कभी कभी हमारे जो हिंदी ट्रांसलेशन सिस्टम ज्यादा अच्छा होता है। तो हम इस बात पर ध्यान करते रहे, इस बात को स्मरण करते रहे, किस बात को, कि हमारा प्रभु ने अपना लहू बहाकर हमें बचाया, हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना लहू बहाया, वो तो बहुत पहले की बात है ना, 2000 पहले हुआ था, 2000 साल पहले हुआ था, फिर हमने 10 या 20 साल पहले विश्वास किया था, तो आज भी याद करना है, ये बात हर रोज याद करने की हमें जरूरत है, इसकी जरूरत है कि हम भूल ना जाए कि हम मसीही कैसे बने, ये हम भूल ना जाए कि आज हम परमेश्वर के घराने के सदस्य हैं, तो हम वो कैसे हुआ, उस लहू बहाए जाने के द्वारा ही हुआ, हमारे किसी अच्छे काम से नहीं हुआ, तब हम दूसरों के लिए भी आसानी से धन्यवाद कर सकेंगे, जैसे मैं बना वैसे ये भी बना है, यानी उस परिवार के अंदर जो मेरी हैसियत है, जितनी मेरी हैसियत है उतनी उसकी भी है, आंखें खुल जाती है ना, चाहे उस व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में कम पता हो या ज़्यादा पता हो, चाहे वो परमेश्वर को जानने के बावजूद भी गुनाह में जी रहा है, तब भी उस घर के अंदर उसकी उतनी ही पदवी है जितनी मेरी है, उसका स्थान में कोई परिवर्तन नहीं है। और परमेश्वर उसको खड़ा कर सकता है, अगर वो फिलहाल ठीक नहीं जा रहा है तो परमेश्वर उसको खड़ा कर सकता है। रोमियो की पत्री का 14वां अध्याय में लिखा है, सॉरी पढ़ लीजिएगा। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए एक दूसरे के लिए, और फिर अपने देश के अगुओं के लिए, नेताओं के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए, विनती भी करनी चाहिए, निवेदन भी करना चाहिए। धन्यवाद मैंने बोला था शुरुआत में, धन्यवाद, धन्यवाद से शुरू कीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप होता रहेगा, आपको समझ में आएगा। आप अगर अन्य भाषा में थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे अपने देश के नेताओं के लिए, तो पवित्र आत्मा की सहायता से आप हिंदी या अंग्रेजी में और बातें भी प्रार्थना कर सकेंगे। और तिमोथी की पुस्तक में जो बातें हमने अभी देखी है, उसमें से एक और बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और इसके बाद हम समाप्त करेंगे, बहुत टाइम हो गया। दूसरा अध्याय में थे ना, दूसरा अध्याय, पहली पत्री का दूसरा अध्याय में हमने पढ़ा था कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबके लिए विनती, निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद करते रहें, और ताकि हम विश्राम और चैन के साथ पूरी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। लेकिन तीसरा पद में क्या लिखा है, ये जानने के बाद और खुशी होगी आपको, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। अब प्रार्थना के विषय में हमने सबसे पहले संडे जब अध्ययन शुरू किया था, तो सबसे पहली बात ये मैंने ये कही थी ना कि हमारी प्रार्थना जो है परमेश्वर की मर्जी के अनुसार होनी चाहिए। यीशु मसीह ने भी यही सिखाया था ना कि जब तुम प्रार्थना करो पिता से, यह कहो कि पिता तेरी मर्जी पूरी हो जाए। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये परमेश्वर की मर्जी है। ये क्या है, ये परमेश्वर की मर्जी है। तो ये प्रार्थना, ये विनती, ये निवेदन, ये धन्यवाद हमें करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर को अच्छा लगता है, है ना, परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता है, यानी परमेश्वर उस चीज़ को ग्रहण करता है। यानी जब आप देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, निवेदन करेंगे, धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। यानी आप जो कुछ प्रार्थना में उनके लिए मांगेंगे, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, वो पूरा हो जाएगा। अगर जब आप धन्यवाद करेंगे, वो ग्रहण किया जाएगा। यहाँ पर आपको एक आश्वासन है, एक अश्योरेंस आपको दिया गया है कि ये आप करेंगे तो परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा। जैसे ही आप सबमिट बटन प्रेस करेंगे एंड में, वो वहाँ चला जाएगा।